समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय।
दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगबग तल में पीयू स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां नारी के उस स्वरूप का चित्रण करती हैं जो जीवन में संवेदना, शक्ति और सृजन की धारा बनकर बहती है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समान अवसरों की भावना को मजबूत करने के लिए मनाया गया है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में तब हुई जब महिलाओं ने अपने अधिकारों, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, समान वेतन और मताधिकार के लिए आवाज उठाई। आज का समय इस बात का साक्षी है कि महिलाएं अब सीमाओं में बंधी नहीं है। खेल हो, अंतरिक्ष हो, विज्ञान, चिकित्सा, पुलिस सेवा या फिर चाहे शासन ही क्यों ना हो, ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई ऊंचाई ना छोड़ रही हो। इतना ही नहीं, वे अपने पेशेवर जीवन के साथ साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियों को भी बड़ी सहजता और संतुलन के साथ निभाती हैं। इसलिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आभार व्यक्त करने का अवसर भी है। तो आज के दिन एक पल निकालिए और अपने आसपास की हर महिला को धन्यवाद कहिए, क्योंकि उनका योगदान हमारे जीवन और समाज दोनों के लिए अनमोल है।
Yes, hello and good day everybody. You are tuned to Parikraman 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Vaishnavi. And as Vaishnavi was just mentioning, today we are celebrating the International Women's Day. So a big shout out to all the women out there. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stone of multiple development projects worth around 33,500 crore rupees in New Delhi.
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाएं अवसर और सहयोग मिलने पर हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।
बलेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी सेट टू फॉर्म गवर्नमेंट इन नेपाल आफ्टर सिक्योरिंग डिसाइसिव लीड इन इलेक्शंस एंड डेसिमेटिंग एस्टैब्लिश्ड पार्टीज।
बर्मिंगम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का सामना लीन चुन ये से होगा।
एंड इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया टू टेक ऑन न्यूजीलैंड इन अहमदाबाद दिस इवनिंग। Yes, and now, listeners, it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Women's Day.
Guncha o gul se bhi kab chahiye tashbih mujhe, husne sirat se meri dijiye tarjih mujhe, meri zulfo meri kajal ki na baate kariye, kuch meri zau ke zehnaat ko bhi achha kahiye. ये पंक्तियां हीना रिजवी द्वारा रचित नज्म बिंत ए हवा से ली गई है, जिसमें नारी की बाहरी खूबसूरती के बजाय उसके चरित्र, बुद्धिमता और योग्यता को सम्मान देने का आह्वान किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री नारी के प्रति नजरिया बदलने और उसे केवल रूप की वस्तु न समझकर एक जागरूक इंसान के रूप में सराहना करने का संदेश देती है।
Yes, and so listeners, when you think about the person who wakes up first in the house, manages 100 things at once, remembers everyone's birthdays, keeps the family going, who comes to your mind? Your mother, your sister, or your colleague who somehow finishes office work and still runs her home perfectly? Exactly, today is a day to celebrate all of them. And the theme this year is powerful and very clear: rights, justice, action for all women and girls. Today is the day to celebrate every girl from a small town who cycles to school every morning because she wants to become a doctor. To celebrate that woman who started a small food business from her kitchen and today supplies meals to half the neighborhood, and to celebrate all the young female athletes practicing on a dusty playground, dreaming of wearing the Indian jersey someday. These stories are not rare anymore. They are happening everywhere across India. In fact, did you know this Global Day celebrating women's achievements has been recognized by the United Nations since 1977? And since then, it has grown into a worldwide movement calling for equal rights and opportunities. And Vaishnavi, here in India too, women are increasingly becoming leaders of change. Women are shaping India's future in powerful ways. And if I ask our listeners who runs the fastest growing small business in India today, and many listeners might guess big entrepreneurs or tech founders. Exactly, but here's a surprising answer. Thousands of women running small enterprises through schemes like Pradhan Mantri Mudra Yojana are transforming local economies, whether it's opening a tailoring shop, a dairy business, or a small digital service center. And initiatives such as Beti Bachao Beti Padhao, ensuring that girls get the education they deserve. And speaking on the occasion, India's President Draupadi Murmu said that when women receive opportunities and support, they achieve excellence in every field, whether it is entrepreneurship, sports, or the corporate world. And India is steadily moving forward with many leaders called women-led development. And when we talk about women shaping society, these lines feel incredibly meaningful, which Vaishnavi is going to recite for us.
मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा के मेरे मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने। ये सुंदर नज्म हीना रिजवी हैदर साहिबा द्वारा लिखी गई है जो आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
Yes, and so even as the country's daughters also shining brightly in sports, and speaking of sports, another interesting question for you, dear listeners, when was the last time you saw a group of women cycling together in a rally or competing in a sports event? Across the country today, that's exactly what is happening. And under the Khelo India initiative, the Asmita League has been launched to encourage more women to participate in sports. In many cities today, cycling rallies, walkathons and sports competitions are taking place celebrating strength, determination and confidence of women. Leaders across the country have also extended their greetings today. Prime Minister Narendra Modi said that the achievements of India's Nari Shakti are a powerful reminder of women's transformative role in nation building. Home Minister Amit Shah also noted that society is deeply indebted to the contributions of women, from nurturing generations to driving economic and scientific progress. And Vaishnavi, if you look at India's history, this is nothing new. Women have always been leaders, whether as protectors of knowledge, freedom fighters, scientists, athletes or entrepreneurs. From homes to parliament, women are shaping the destiny of the nation every single day. So listeners, if I ask you who's the strongest woman you know, maybe it's your mother, your teacher, your colleague, or perhaps someone who quietly supports everyone around her without asking for recognition. So today is a perfect day to thank her. And perhaps this feeling has been captured beautifully in these poetic lines which Vaishnavi is going to tell us.
मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ। मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हसी महवर हूँ।
Absolutely true, because when women rise, families rise, communities rise, and nations rise. So, to wind up a discussion on the International Women's Day, on this International Women's Day, let us celebrate the strength, courage, and limitless potential of India's Nari Shakti. And remember, the story of India's progress is incomplete without its women.
श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, and with the onset of spring season and tourist inflow in the Himalayan region of Leh-Ladakh, the district administration is all set for preparation for its guests. And in this regard, 6 months cleanliness initiative kickstarts in Leh district. Let's listen more on this from a Leh correspondent, Phunsuk Wangmo.
Leh Laksmo, a six-month cleanliness initiative has been launched in Leh district. The district-wide cleanliness initiative is aimed at promoting a cleaner, healthier and more beautiful Leh town. The initiative will seek to enhance sanitation standards, promote responsible waste disposal and will encourage active participation from the community in large in maintaining public hygiene. During this period, the district administration is focused on Swachhata activities, which will be carried out in streets, marketplace, public places and identified waste hotspot within the Leh town area. Leh Laksmo, the cleanliness drive will be conducted with the active participation of the municipality team members, volunteers, educational institutions and various other stakeholders, including Merchant Association Leh, All Ladakh Guest House Association and All Ladakh Tour Operators Association. The initiative emphasizes community participation in waste segregation and collective responsibility towards maintaining a cleaner town environment. Citizens, business establishment and stakeholders have been encouraged to actively contribute and support the campaign to make Leh a cleaner and more sustainable district. As part of the program, a week-long special cleanliness drive has been commenced from today onwards in Leh town areas. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
And Leh se ruk karte hain Chandigarh ki aur. Sangh Lok Seva Aayog ki civil seva pariksha ke parinam ghoshit ho gaye hain. Hamare samvaddata Chandigarh se is pariksha mein chhatron ki ullekhniya uplabdhiyon ke bare mein jankari de rahe hain.
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में हरियाणा के पंचकुला निवासी एकांश ढोल ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि पर पंचकुला सहित पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है. 25 वर्षीय एकांश ढोल भाजपा नेता कृष्ण ढोल के पुत्र हैं. एकांश ढोल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वह पहले भी दो बार इस परीक्षा में चुने जा चुके हैं. इस सिविल सेवा परीक्षा में फरीदाबाद के युवाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. फरीदाबाद के सेक्टर 28 के निशिक अग्रवाल ने 72वां और बल्लभगढ़ की गीतिका अरोड़ा ने 22वां रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवा अपने सपनों, कड़ी मेहनत और अनुशासन व सेवा भावना की कसौटी पर खरे उतरे हैं. उन्होंने कहा कि सफल रहे अभ्यर्थियों की उपलब्धि न केवल उनके परिवार और शिक्षकों बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है. एकांश ढोल के देश भर में तृतीय स्थान हासिल करने को प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एकांश ढोल ने हरियाणा का मान बढ़ाया है. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
The vibrant spirit of Goa's traditional Sigmo festival filled the streets of Panaji last evening as the grand Sigmo parade was held with great enthusiasm and colourful displays. We have more details from a correspondent.
Echoes of drums and cheers filled the air in Panaji as the Sigmo parade unfolded in a grand manner. The parade was inaugurated by Tourism Minister Rohan Khante in the presence of Panaji Sigmotsav Committee President and noted industrialist Srinivas Dempo. Speaking on the occasion, Khante said, Sigmo is not just a festival but a celebration of Goa's rich culture and tradition. He added that modern technology is now being used creatively while preserving traditional themes. Colorful floats depicting mythological stories, energetic drum troops and Romdamel performances captivated spectators. Participants in fancy dress also added to the festive mood. The celebrations continue across Goa with MAPSA hosting the parade today, Kepe on March 9th and Dichole on March 10th. The traditional horse dance, Gode Modni, one of Goa's most vibrant folk performances, will also be highlighted in Dichole. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
देश की आजादी की लड़ाई हो, पर्यावरण संरक्षण या प्रकृति के साथ मानव का सह अस्तित्व हो, इन सब में आदिवासी समाज का योगदान उल्लेखनीय है. इस कड़ी को और मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन कल से आरंभ हुआ है. इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल किया. आज इस सम्मेलन का समापन है.
दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा में कल शनिवार से आरंभ दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया. इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों विशेष करके पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पड़ोसी राज्य नेपाल से करीब 250 से अधिक संथाल प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं. बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाल समुदाय की वीरता, देश की आजादी में उनका योगदान, उनकी समृद्ध संस्कृति व परंपरा बताऊं, संस्थाल भाषा को संवैधानिक मान्यता, संथाली भाषा अलचिकी में संविधान का अनुवाद तथा देश के आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के असाधारण कार्यों का विशेष उल्लेख किया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय जनजाति मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने देश के आदिवासी समाज के विकास हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डाला। संथाल परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नरेश कुमार मुर्मू ने कहा, इस दो दिवसीय सम्मेलन में आदिवासी समाज की समस्याओं, उनके समाधान, सामाजिक गौरव व भाषा संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन आदि जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, करशंग।
Yes, and with the launch of the State of the Art Archives and Heritage Center, the Kerala State Archives Department is bringing together fragile palm leaf manuscripts that trace the story of kingdoms from as early as the 14th century. We have more from Smithy M. Palurathi, our Thiruvananthapuram correspondent.
In a major step to preserve Kerala's documentary heritage, the Kerala State Archives Department has launched a new Archives and Heritage Center at Thiruvananthapuram. The facility will safeguard administrative palm leaf records dating back to the 14th century. Nearly 1 crore manuscripts related to the erstwhile Travancore Kingdom will be housed here. Around 5 lakhs records from the Cochin and Malabar regions will also be preserved at the new center at Karyavattam. Documents linked to the Travancore royal family, the Cochin royal family and the Chirakkal and Arakkal royal houses will be shifted to this single location. Conservation work is currently in progress. Now, let's listen to Srimathi Parvathi, Kerala Archives Director.
The University of Kerala provided 1 acre of land to construct the research center. The center will offer specialized facilities for researchers and students to conduct their studies. The building will house advanced laboratories for the conservation and digitization of palm leaf records. Preserving these records under a single roof will be highly beneficial for scholars and researchers from all over the world.
The new center is expected to play a key role in protecting Kerala's rich archival legacy for the future generations. Midhi M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। बर्मिंघम में आज शाम 5 बजे लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के लीन चुन यी से होगा। लक्ष्य सेन ने कल रोमांचक सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को हराया था।
Yes, and the ICC Men's T20 Cricket World Cup, defending champions India will lock horns with New Zealand in the summit clash at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match will start at 7 in the evening.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम स्वाधीनता सेनानी विश्वनाथ दास को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए।
विश्वनाथ दास 1921 से 1930 तक मद्रास प्रांत की विधान परिषद के सदस्य रहे और 1931 में त्याग पत्र देकर नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने ओडिया भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1937 से 1939 के दौरान ब्रिटिश शासन के ओडिशा प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील पर 4 नवंबर 1939 को प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया।
इन ग्रेट ब्रिटेन इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन स्टैट्यूज। पार्लियामेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ ब्रिटेन एंड पार्लियामेंट was exercising the power of paramountcy. That being the position, I do not see any reason how the state rulers and their representatives could object to these expressions.
संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को विश्वनाथ दास का अभिभाषण।
There is no reason for anyone to think that India would think of any other sovereign state than a republic. And a republic does not mean wiping off the states. I think that's a apprehension that is unfounded.
स्वतंत्रता के उपरांत बिस्वनाथ 1950 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1962 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए और बाद में 1971 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा के पुनरुत्थान में अमिट योगदान देने वाले बिस्वनाथ का 2 जून 1984 को निधन हो गया। महान भारतीय को नमन।
आज हम स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था।
गोपी चंद का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। वे 1919 में जलियांवाला बाग के नरसंहार से व्यथित होकर राजनीति में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद गोपी चंद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया तथा 1921 से 1942 के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने कांग्रेस संगठन में कई पद संभाले। 1946 में वे पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल के आग्रह पर उन्होंने पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। वे 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे गांधी मेमोरियल फंड के प्रथम अध्यक्ष भी थे। 26 दिसंबर 1966 को गोपी चंद का निधन हो गया। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी को नमन।
आज हम शहीद बसंत लाल रावल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1942 में अहमदाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में बसंत लाल शहीद हो गए। भारत के महान सपूत को हमारा नमन।
हम दिल्ली के निवासी स्वाधीनता सेनानी वजूद अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट कमांडर की हत्या और राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सेना ने वजूद अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 8 मार्च 1858 को फांसी दे दी गई। शहीद वजूद अली को नमन।
आज पुण्यतिथि है। हिंदी और उर्दू साहित्य की दुनिया में मानवीय संवेदनाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने वाले प्रसिद्ध कहानीकार कृष्णचंद्र की। उनकी कहानियों में आम आदमी का जीवन, संघर्ष और समाज की सच्चाइयां स्पष्ट दिखाई देती हैं। कृष्णचंद्र की कहानी लेखनी बेहद सरल, संवेदनशील और प्रभावशाली मानी जाती है, जिसने पाठकों के दिलों को गहराई से छुआ। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में एक गधे की आत्मकथा, कहानी के पीछे और शिकस्त जैसी रचनाएं शामिल है। कृष्णचंद्र की कहानियां आज भी हिंदी उर्दू साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। वे उन लेखकों में गिने जाते हैं जिन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया।
Yes, and we also remembering Gary Anthony James Webb, who was born on this day in 1958, known professionally as Gary Numan. He is an English singer, songwriter and musician. He entered the music industry as frontman of the new wave band Tubeway Army. The band's second and final album, 1979's Replicas, reached number one on the UK albums chart and spawned a UK number one single with Our Friends Electric. Following the band's split, he released his debut solo album, The Pleasure Principle, later in 1979, which also reached number one in the UK and produced another UK number one single with the track Cars. Let's listen into it.
आज हम याद कर रहे हैं निर्भीक पत्रकारिता और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता को। आज उनकी पुण्यतिथि है। विनोद मेहता भारतीय पत्रकारिता में स्वतंत्र सोच और निष्पक्ष लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में द पाइनियर, द इंडिपेंडेंट और द संडे ऑब्जर्वर जैसे कई प्रमुख प्रकाशनों का संपादन भी किया। पत्रकारिता के साथ साथ वे एक बेहतरीन लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा लखनऊ बॉय काफी चर्चित रही। विनोद मेहता का मानना था कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व सत्ता से सवाल करना और सच को सामने लाना है।
Yes, and from one journalist to another, we're also remembering Lester Don Holt Jr., who was born on this day in 1959. He is an American journalist who was a news anchor for the weekday edition of the NBC Nightly News, NBC Nightly News Kids Edition, and is currently a news anchor for Dateline NBC. And on June 18, 2015, Holt was made the permanent anchor of the NBC Nightly News following the Iraq War reporting controversy of Brian Williams. Holt followed in a career footsteps of Max Robinson, an ABC News evening co-anchor, and became the first black male solo anchor for a major network newscast.
मराठी साहित्य में सामाजिक चेतना और यथार्थवादी लेखन को नई दिशा देने वाले हरि नारायण आप्टे का जन्म 8 मार्च 1864 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने उपन्यासों और नाटकों के माध्यम से उस दौर के समाज, परिवार और मानवीय संबंधों को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया। हरि नारायण आप्टे विशेष रूप से अपने सामाजिक उपन्यासों के लिए जाने जाते थे, जिनमें आम लोगों के जीवन की समस्याओं और संघर्षों को प्रमुखता से दिखाया गया है। उन्होंने मराठी भाषा को सरल और प्रभावशाली शैली दी, जिससे आम पाठक भी साहित्य से जुड़ सके। उनके प्रसिद्ध कृतियों में पण लक्षात, कोण घेतो और ऊषा जैसे उपन्यास शामिल है।
Yes, and Abdul Hai was born on this day in 1921, popularly known by his pen name Sudhir Ludhianvi. He was an Indian poet who wrote primarily in Urdu in addition to Hindi. He is regarded as one of the greatest film lyricists and poets of the 20th century India. And his work has influenced Indian cinema and particularly Hindi language films. Sahir won the Filmfare Award for Best Lyricist for Taj Mahal in 1963. And he won a second Filmfare Award for Best Lyricist for his work in Kabhi Kabhi in 1976. And he was also awarded the Padma Shri in 1971.
साहिर की शायरी सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसमें समाज, इंसानियत और व्यवस्था के प्रति तीखे सवाल भी होते थे। उन्होंने फिल्मी गीतों को भी साहित्यिक गरिमा दी और शब्दों को गहराई और संवेदना से भर दिया। फिल्म प्यासा, कभी कभी और फिर सुबह होगी जैसे फिल्मों के गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। और अब आपको सुनाते हैं साहिर लुधियानवी की कलम से निकला एक सदाबहार नगमा।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आक्रामक बल्लेबाज और कप्तान हरमनप्रीत कौर का जन्मदिन है। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और दमदार नेतृत्व से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को कई यादगार जीत दिलाई है। दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं और लंबे समय से भारतीय महिला क्रिकेट की टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिनी जाती है। 2017 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की ऐतिहासिक पारी आज भी महिला क्रिकेट टीम की सबसे शानदार पारियों में मानी जाती है। साल 2025 में उनके नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर विश्व कप जीतने वाली भारत की पहली महिला कप्तान बनी। उनकी कप्तानी और जुझारू खेल भावना ने देश भर में महिला क्रिकेट के प्रति रुचि और सम्मान को नई ऊंचाइयां दी है।
Yes, Harmanpreet Kaur, the cricketer who plays as an all-rounder and captains the Indian women's national team, and she's of course the top-order batter and right-arm off-spin bowler. Moving on, Kenneth Douglas Stewart Anderson was born on this day in 1910, known primarily as Kenneth Anderson or KDS Anderson. He was a Scottish Indian writer, nature enthusiast, conservationist, and ethical hunter who lived and worked in South India. He authored highly regarded books based on his experiences hiking, camping, and hunting in the Indian jungles. Anderson initially gained fame around Bangalore as an outstanding hunter of high ethics. Later, his brave and skillful hunting and menacing man-eater leopards and tigers throughout South India earned him the nickname Corbett of the South, in reference to his older North Indian counterpart Jim Corbett. And in mid-20th century, alarmed and disheartened by the destruction of wildlife, he pleaded for the preservation of flora and fauna of the forest in all regions of India. And as an ex-hunter expert on wild animals' behavior, he was a trailblazer in wildlife tourism in Bangalore and is admired as a pioneer conservationist in southern India.
आज जन्मदिन है प्रेरक लेखन और उद्यमिता की कहानियों को लोकप्रिय बनाने वाली जानी मानी लेखिका रश्मि बंसल का। उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से भारत के कई युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स की प्रेरणादायक कहानियां लोगों तक पहुंचाई है।
यस एंड पालिया लंकेश ओपी लंकेश वाज बोर्न दिस डे 1935। ही वाज एन इंडियन पोएट फिक्शन राइटर प्ले राइट ट्रांसलेटर स्क्रीन प्ले राइटर एंड जर्नलिस्ट हु रोट इन कनाडा। He was also a film director. So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama.
जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।